लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे असाध्य रोगियों और उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि उन्हें आवश्यक शारीरिक और आध्यात्मिक देखभाल, सहयोग और समर्थन मिल सके। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओ, हम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत अपने मंगलवारीय कार्यक्रम में संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्र लौदातो सी मेरे प्रभु तेरी स्तुति हो की चर्चा सुन रहे हैं। हमने लौदातो सी के दूसरे अध्याय सृष्टि का सुसमाचार की चर्चा करते हुए अपने पिछले प्रसारण के अंतिम भाग में असीसी के संत फ्रांसिस के गान का जिक्र किया, तेरी स्तुति हो मेरे प्रभु तेरे सभी जीव जंतुओं के लिए, विशेषकर भाई सूर्य के लिए जो हमारे लिए प्रभात है और जिसके द्वारा तू हमें ज्योति प्रदान करता है, और वह अपने में सुंदर और चमकीला शानदार है जो तेरी छवि को धारण करता है। सर्वोच्च ईश्वर तेरी प्रशंसा हो मेरे प्रभु, बहन चंद्रमा और तारों के द्वारा स्वर्ग में तूने उनकी रचना की जो सुंदर, कीमती और मनोरम है। तेरी स्तुति हो मेरे प्रभु, बहन वायु के द्वारा और हवा के माध्यम बादलों और शांतिमय वातावरण और सभी प्रकार की जलवायु में, जिनके द्वारा तू अपने सारी जीव जंतुओं को पोषण प्रदान करता है। तेरी स्तुति हो मेरे प्रभु, जल रूपी बहन के द्वारा जो हमारे लिए अति उपयोगी है, जो नम्र, मूल्यवान और अपने में शुद्ध है। तेरी स्तुति हो मेरे प्रभु, भाई आग के द्वारा जिसके द्वारा तू रात्रि को प्रज्वलित करता है, और वह अपने में सुंदर और चंचल है जो पुष्ट और मजबूत है। श्रोताओ, संत पापा कहते हैं कि ब्राजील के धर्माधर्शकों ने इस बात की ओर इंगित किया है कि प्रकृति अपने में पूर्णतः न केवल ईश्वर की अभिव्यक्ति है, बल्कि उनकी उपस्थिति का एक सिंहासन है। जीव रूपी आत्मा हर एक जीवित प्राणी में वास करता है और हमें उसके संग एक संबंध में प्रवेश करने का निमंत्रण देता है। इस उपस्थिति को पाना हमें पारिस्थितिकी गुणों को उत्पन्न करने को अग्रसर करता है। हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि ईश्वर और दुनिया की चीजों के बीच एक अनंत दूरी है जो उनकी पूर्णता को धारण नहीं करते हैं। ऐसा नहीं होता तो हम जीवों के लिए कोई भलाई नहीं करेंगे, क्योंकि हम उनके अधिकारों को नहीं पहचानेंगे और उन्हें उचित स्थान देने में असफल होंगे। हम उनसे अनुचित रूप में कुछ उन चीजों की मांग करेंगे जिसे वे अपने छोटेपन में हमें नहीं दे पाएंगे। श्रोताओ, इस विश्व में बनाई गई सारी चीजें स्वामित्व से स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि वे तेरी हैं, हे ईश्वर जो जीवितों को प्रेम करता है। यह हमारे विश्वास का आधार है कि विश्व के अंग स्वरूप हम पिता के संग एक होने के लिए बुलाए गए हैं। हम एक दूसरे के संग एक अदृश्य रूप में जुड़े हुए हैं और एक साथ मिलकर एक वैश्विक परिवार का निर्माण करते हैं जो हमें उत्कृष्ट एकता में पवित्रता, स्नेह और नम्रता में सम्मानता से संयुक्त करता है। संत पापा फ्रांसिस कहते हैं कि यहाँ मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा, ईश्वर ने हमें विश्व में इतनी निकटता से संयुक्त किया है कि हम मिट्टी के मरुस्थलीकरण को लगभग एक शारीरिक बीमारी के रूप में और किसी प्रजाति के लुप्त होने को एक दर्दनाक विकृति के रूप में महसूस कर सकते हैं। श्रोताओ, यह सभी सजीव प्राणियों को एक स्तर पर नहीं रखता है, न ही मानव जाति को जो उनकी अद्वितीय योग्यता और उत्तरदायित्व से दखल करना जिसे वे अपने में धारण नहीं करते हैं, ना ही इसका तात्पर्य पृथ्वी को ईश्वर का रूप स्वरूप देना है जो हमें इस पर काम करने और इसकी नाजुकता में इसकी रक्षा करने से रोकेगा। इस बात पर विचार हमारे लिए एक नए असंतुलन को जन्म देगा जो हमें सच्चाई से विमुख करता, जो हमें चुनौती प्रदान करती है। कभी कभी हम एक जुनून को पाते हैं जिनके फलस्वरूप मानव व्यक्ति की श्रेष्ठता जो कम आंकी जाती है, जहां मानवीय सम्मान की सुरक्षा करने के बदले हम एक बड़े उत्साह से दूसरे जीवों की सुरक्षा करते हैं। निश्चित रूप में हमें चाहिए कि हम ऐसा करें, नहीं तो दूसरे जीवित प्राणियों के संग गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया जाएगा। हमें अपने बीच मौजूद भारी असमानताओं पर विशेषकर क्रोधित होना चाहिए, जबकि हम में से कुछ हैं जो लोगों को सहन करते जाते, जो अपने को दूसरों से अधिक महत्वपूर्ण समझते हैं। इस सच्चाई को देखने में असफल होते हैं कि कुछ लोग हैं जो गरीबी और अपमानजनक जिंदगी में फंसे हुए हैं, जिनके लिए वहां से निकलने हेतु कोई मार्ग नहीं है, जबकि वहीं कुछ हैं जो अपनी धन संपत्ति के उपयोग में सबसे क्षुद्र विचार धारण करते हैं, जहां वे अपने बड़ेपन का दिखलावा करते और अपने पीछे बहुत अधिक बर्बादी छोड़ते हैं। यदि ऐसी ही स्थिति सभी जगह रही तो हम पृथ्वी का सर्वनाश करेंगे। व्यवहारिक रूप में हम सभी अपने में इस बात को निरंतर सहन करते हैं कि कुछ हैं जो अपने को दूसरों से श्रेष्ठ समझते हैं, मानो उनका जन्म अपने में वृहद अधिकारों के भोग हेतु हुआ है। श्रोताओं, हम प्रकृति के अन्य चीजों के संग एक सच्चे गहरे संबंध में प्रवेश नहीं कर सकते हैं यदि हमारे हृदय में करुणा, कोमलता और दूसरे भाइयों के लिए चिंता के भाव नहीं हैं। लुप्त प्राय प्रजातियों की तस्करी की रोकथाम की हमारी लड़ाई स्पष्ट रूप से असंगत है, जबकि हम मानव तस्करी के संबंध में अपने को उदासीन पाते हैं। हम गरीबों की चिंता नहीं करते या दूसरे मानव के अस्तित्व, जिसे हम नहीं चाहते, नष्ट करने की सोचते हैं। यह पर्यावरण के संग हमारे संघर्ष के मूल अर्थ से समझौता करना है। यह संयोग की बात नहीं कि असीसी के संत फ्रांसिस अपने गान में जीवों के लिए ईश्वर की स्तुति करते हुए कहते हैं, मेरे प्रभु तेरी स्तुति हो जो तेरे प्रेम के माध्यम क्षमा देते हैं। सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। पर्यावरण की चिंता इस भांति हमसे इस बात की मांग करती है कि हम निष्ठा में प्रेम में अपने को अन्य भाई बहनों के संग संयुक्त करें और समाज की समस्याओं के समाधान के प्रति अटूट प्रतिबद्धता में बने रहें। इससे भी बढ़कर जब हमारे हृदय सच्चे रूप में विश्व एकता हेतु खुले रहते हैं, तो यह भ्रातृत्व हमें किसी को और किसी से पृथक नहीं करता है। इसका तात्पर्य यह है कि इस संसार के अन्य प्राणियों के प्रति हमारी उदासीनता या क्रूरता देर सबेर अन्य मनुष्यों के प्रति हमारे व्यवहार को प्रभावित करती है। हमारा केवल एक हृदय है और वहाँ व्याप्त बुराई जो हमें एक जंतु के संग दुर्व्यवहार करने को अग्रसर करती, तो अतिशीघ्र ही दूसरे व्यक्तियों के संग या हमारे संबंध में व्यक्त होगा। हर क्रूर व्यवहार जिसे हम किसी सजीव के लिए करते हैं, हमारे लिए मानवीय सम्मान के विरुद्ध है। हम अपने को कभी भी पूर्ण प्रेम के योग्य नहीं कह सकते हैं यदि हम सच्चाई के किसी भी तत्व का अनादर करते हैं। शांति, न्याय और सृष्टि की सुरक्षा अपने में तीन ऐसी विषय वस्तुएं हैं जो सदैव एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जिसे हम अलग नहीं कर सकते हैं और किसी दूसरे को व्यक्तिगत रूप में इसका शिकार बना सकते हैं। सारी चीजें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और हम मानव भाई बहनों के रूप में एक दूसरे के संग विस्मयकारी ढंग से एक तीर्थ यात्री की भांति हैं। यह ईश्वर द्वारा प्रत्येक प्राणी के प्रति प्रेम से बुना गया है और जो हमें भाई सूर्य, बहन चंद्रमा, भाई नदी और धरती माता के साथ स्नेहपूर्ण एकता में एकजुट करता है। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्र लौदातो सी पर एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। ईश्वर उन नम्र लोगों को चाहते हैं जो उन पर भरोसा रखते, स्वयं पर और अपनी योजना पर नहीं। ख्रिस्त विनम्रता केवल एक सद्गुण नहीं है, यह जीवन का मूल स्वभाव है। हमारा मानना है कि हमें ईश्वर की आवश्यकता है और हम उनके लिए जगह बनाते हैं, अपना सारा भरोसा उन पर रखते हैं। यह बात संत पापा फ्रांसिस ने 12 मार्च को अपने एक संदेश में कही है। वैटिकन विदेश सचिव महाधर्मदूत पॉल रिचर्ड गलागर अपनी 4 दिवसीय यात्रा पर जॉर्डन पहुंचे हैं, जहां उन्होंने पौत्र भूमि के धर्मदक्षों के साथ सामूहिक प्रार्थना सभा में भाग लिया और राजा अब्दुल्ला द्वितीय एवं UNRWA के आयुक्त जनरल से मुलाकातें की। वैटिकन विदेश सचिव 11 से 14 मार्च तक जॉर्डन की यात्रा पर हैं और इसके साथ वे जॉर्डन एवं परमधम पीठ के बीच पूर्ण राजनयिक संबंधों की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। वैटिकन राज्य सचिवालय द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार महाधर्मदक्ष ने सोमवार को राजा अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन और विदेश मंत्री आयामिन सलादी से मुलाकात की। उन्होंने जॉर्डन से गजा में मानवीय सहायता संग्रह भेजने वाले केंद्र हशमाइट परोपकारी संगठन का भी दौरा किया। बाद में उन्होंने पूरे पौत्र भूमि के कातिक धर्मदक्षों एवं जॉर्डन के कातिक समुदाय के साथ अम्मान के स्वेफा में नाजरेत की संत मरिया गिरजाघर में पौत्र मिसा अर्पित किया। मंगलवार को महाधर्मदक्ष कलाघर की पौत्र भूमि के धर्मदक्षों के साथ बैठक है और वे अदाबा शहर में इराक और सीरिया के शरणार्थियों के लिए परोपकारी स्वागत केंद्र का दौरा कर रहे हैं। बुधवार को वे येसु के बपतिस्मा स्थल माउंट नेबो और मकेरुस का दौरा करेंगे और बुधवार को ही वे पर्यटन एवं पुरावशेष मंत्री मकरम मुस्ताफा क्यूसी से मिलेंगे। महाधर्मदक्ष कलाघर यात्रा के आखिरी दिन गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र के फिलिस्तीनी राहत एजेंसी UNRWA के आयुक्त जनरल फिलिप लाजारिनी से मिलेंगे। रेडियो टेलीविजन स्विस के साथ यूक्रेन में युद्ध पर पोप फ्रांसिस के साक्षात्कार के बाद वैटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पियत्रो परोली ने इतालवी समाचार पत्र कोरियेरे देला सेरा के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करते हुए कहा कि परमाणु हथियार के बढ़ने का खतरा है। यह स्पष्ट है कि पोप आत्मसमर्पण के बजाय बातचीत का आह्वान कर रहे हैं, लेकिन दोनों पार्टियों में से केवल एक यूक्रेन को ही संबोधित क्यों किया जा रहा है, रूस को क्यों नहीं? और क्या कोई जोखिम नहीं है कि बातचीत के लिए प्रेरणा के रूप में आक्रामक पक्ष की हार का आह्वान किया जाए? इस सवाल के उत्तर में कार्डिनल पारोले ने कहा, जैसा कि वैटिकन प्रेस कार्यालय के निदेशक ने पिछले साल 25 फरवरी को संत पापा के शब्दों का हवाला देते हुए कहा था कि पोप की अपील है कि न्याय संगत एवं स्थायी शांति की खोज में राजनयिक समाधान के लिए स्थितियां बनाई जाएं। यह स्पष्ट है कि ऐसी स्थितियों के निर्माण की जिम्मेदारी केवल एक पक्ष पर नहीं बल्कि दोनों पर आती है और मुझे पहली शर्त बिल्कुल आक्रामकता को समाप्त करने की लगती है। इसमें पृष्ठभूमि को कभी नहीं भूलना चाहिए जो इस मामले में एक प्रश्न है जिसको पोप को संबोधित किया गया था जवाब में उन्होंने समझौता और विशेष रूप से बातचीत के साहस की बात कही थी जो आत्मसमर्पण बिल्कुल नहीं है। वैटिकन इस पंक्ति का अनुसरण करता और युद्ध विराम का आह्वान करता है और आक्रामकों को चाहिए कि वे पहले गोलीबारी बंद करें और फिर वार्ता शुरू करें। संत पापा बतलाते हैं कि बातचीत करना कमजोरी नहीं है बल्कि ताकत है या समर्पण नहीं बल्कि साहस है और वे कहते हैं कि हमें मानव जीवन का अधिक ख्याल रखना चाहिए, उन लाखों मानव जीवन का जो यूरोप के मध्य में इस युद्ध में बलिदान हुए हैं। ये ऐसे शब्द हैं जो यूक्रेन के साथ साथ पौत्र भूमि और दुनिया को प्रभावित करने वाले अन्य संघर्षों पर भी लागू होते हैं। क्या कूटनीतिक समाधान अब भी संभव है? इसके उत्तर में उन्होंने कहा, चूंकि ये ऐसे निर्णय हैं जो मानवीय इच्छा पर निर्भर करते हैं इसलिए राजनयिक समाधान तक पहुंचने की संभावना हमेशा बनी रहती है। यूक्रेन के विरुद्ध छेड़ा गया युद्ध किसी बेकाबू प्राकृतिक आपदा का परिणाम नहीं है बल्कि पूरी तरह मानवीय स्वतंत्र इच्छा शक्ति का परिणाम है। उसी मानवीय स्वतंत्र इच्छा शक्ति की जो इस त्रासदि का कारण बने उसे समाप्त करने के लिए कदम उठाने और राजनयिक समाधान का मार्ग प्रशस्त करने की संभावना और जिम्मेदारी भी है। हांगकांग में इन दिनों जब ख्रिस्ते धर्म एवं ताओवाद पर एक सम्मेलन चल रहा है, कार्डिनल स्टीफन चाओ और मोनसिनियर इंदुनिल कोडी थुआकू इन दो प्राचीन धार्मिक परंपराओं के बीच संवाद के महत्व पर चर्चा कर रहे हैं। हांगकांग में चल रहे सम्मेलन की विषय वस्तु है अंतरधार्मिक संवाद के माध्यम से एक सामंजस्यपूर्ण समाज का निर्माण, जिसमें ख्रिस्तियों और ताओवादियों को 3 दिनों के चिंतन एवं चर्चा के लिए एक साथ लाया गया है। अंतरधार्मिक वार्ता के लिए गठित वैटिकन विभाग एवं हांगकांग के कार्तिक धर्म प्रांत तथा ताओवाद संघ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित सम्मेलन में पूरे एशिया के साथ साथ कुछ यूरोपीय देशों के विद्वान और विशेषज्ञ भी भाग ले रहे हैं। जैसे ही सम्मेलन का पहला दिन समाप्त हुआ, हांगकांग के बिशप कार्डिनल स्टीफन चाओ और अंतरधार्मिक संवाद विभाग के सचिव मोनसिनियर इंदुनिल ने ख्रिस्त धर्म एवं ताओवाद के बीच संपर्क के बिंदुओं के बारे में वैटिकन न्यूज से बात की। कार्डिनल चाओ ने कहा, सम्मेलन का उद्देश्य यह प्रदर्शित करना है कि कैसे धर्म हमारे समाज के निर्माण के लिए रचनात्मक भागीदार बनने के लिए हाथ मिला सकते हैं। कार्डिनल ने कहा, ताओवादी धर्म का दृष्टिकोण दुनिया में शांति और एकता की ओर एक आंदोलन को बढ़ावा देना है, जहां मानवता और मार्ग, हम कहेंगे प्रतीक चिन्ह, जुड़े हुए हैं। उन्होंने आगे कहा, आशा है कि सेवा के इस साझा भावना की मान्यता से चीन में धर्म के मूल्य और अर्थ को बेहतर ढंग से सराहा जाएगा। हांगकांग के बिशप ने कहा कि ख्रिस्ती धर्म और ताओवाद दया, सादगी और सांसारिक उपलब्धियों के लिए प्रयास न करने के मूल्यों को साझा करते हैं। हैती में 23 फरवरी को अपहृत सेक्रेट हार्ट धर्म समाज के 4 ब्रदरों और 1 शिक्षक को रिहा कर दिया गया है जबकि 2 को अभी भी कैद में रखा गया है। सरकार को गिराने की धमकी देने वाली सामूहिक हिंसा के बीच हैती आपातकाल की स्थिति में है। पौत्र हृदय को समर्पित धर्म संघ के धर्म बंधुओं ने सोमवार को बतलाया कि पोर्ट ऑफ प्रिंस प्रांत में 2 सप्ताह पहले अपहरण किए गए 7 लोगों में से 5 को उनके अपहरणकर्ताओं ने रिहा कर दिया है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।